अर्पा रेडियो पर सुनते हैं कार्यक्रम बोलती कहानियाँ। आज हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला ब्रजमोहन की लिखी कहानी संज्ञा टंडन की आवाज में। कहानी का नाम है अबोध। बेटी सुरभि को विदा करते समय सेठ चमनलाल का कलेजा मुंह को आ रहा था। वो अबोध ससुराल जाकर क्या क्या गुल खिलाएगी, इसकी संभावना से वे भली भांति परिचित थे। उसको जन्म देकर उसकी माँ सुलक्षणा चल बसी थी, वही उसके पिता और माता दोनों बनकर रह गए थे। उन्होंने दूसरा विवाह नहीं किया था, जानते थे वे माता उनकी बेटी को सुख नहीं दे पाएगी। अपना समस्त स्नेह उन्होंने बेटी पर उंडेल दिया था, इस कारण भी सुरभि जरा जिद्दी हो गई थी। बचपन से माँ जो सीखे अपनी बच्ची को देती है, उनसे वे अनभिज्ञ थे। इस कारण उनके हृदय में एक अव्यक्त सा भय छाया हुआ था। अभी सुरभि की उम्र ही क्या थी, 18वां ही तो पूरा किया था। उन्होंने सोचा कि उम्र के संग उसमें परिपक्वता भी आ जाएगी, पर वो इतनी जल्दी विवाह के लिए जिद कर बैठेगी, इसकी तो उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जब उसने पूरा दिन खाना नहीं खाया और रोते रोते आंखें सुजा ली, तब उन्हें झुकना ही पड़ा। बचपन से ही वे उसकी जिदें पूरी करते आ रहे थे, पर इस जिद को मानने को उनका मन गवाही नहीं दे रहा था। इतने ऐश्वर्य में पली लड़की एक मध्यम श्रेणी के परिवार के संग कैसे सामंजस्य कर पाएगी, इसी चिंता में वे घुले जा रहे थे। प्रबोध एक अच्छा लड़का था, स्वभाव का अत्यंत नम्र तथा सच्चरित्र था, पर पैसे का अभाव तो था ही। वो अच्छी नौकरी पर था, पर उसकी जिम्मेदारियां भी थीं। माता पिता तथा बहन का बोझ उसी के कंधों पर था। ऐसे में इस ऐश्वर्य में पली लड़की का वहां गुजारा होना उन्हें जरा मुश्किल सा लग रहा था, पर बेटी की जिद के कारण उन्हें हथियार डालने पड़े। उन्होंने रोते रोते बेटी को कलेजे से चिपका कर कहा, सुरभि बेटी, अपने बूढ़े बाप की पगड़ी की लाज रखना। ससुराल को अपना घर और वहां रहने वालों को आदर और स्नेह देना। पति या उनके प्रियजनों को कभी शिकायत का मौका मत देना। उनके बीच में रहकर अपने को उनसा ढाल लेना, और मेरे पास कभी शिकायत लेकर मत आना। सुरभि ने रोते रोते कहा, पिताजी आप इतनी बातें कह चुके, अब मेरी भी तो कुछ सुनिए। क्यों ना हम दोनों यहीं रह जाएं, तो कोई टंटा ही नहीं उठेगा, आप भी चिंता से मुक्त हो जाइएगा। वैसे भी हम आपके बिना वहां नहीं रह पाएंगे, इनके ऑफिस जाते ही हम भाग कर आपके पास आ जाएंगे। इस अबोध सी भोली बातें सुनकर सेठ चमनलाल भर्राए स्वर में बोले, बेटे अब ये घर तेरा नहीं रहा, तेरा घर तो ससुराल है। कन्यादान करते ही तू पराई हो गई थी, अब मेरा तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं रहा, सुख दुख सभी तुझे वहीं झेलने हैं। ये कहते कहते सेठ जी की आंखों से अविरल आंसू बहने लगे। प्रबोध ने कहा, बाबूजी आप चिंता मत कीजिए, सुरभि अबोध हो सकती है, पर जिस कारीगर को आप सौंप रहे हैं वो उसे इतने सुंदर रूप में ढालकर आपके सामने पेश करेगा कि आप अपनी गढ़ी मूर्ति को पहचानने में भूल कर जाएंगे। वो अभी छोटी है, हम जिस ढांचे में उसे ढालेंगे वो ढल जाएगी। उसके अंदर दबे गुणों को निखारना हमारा काम है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। ये कहकर उसने आदर से ससुर के चरण स्पर्श किए। सेठ जी बोले, बेटा अब हमारी अमूल्य थाती तुझे सौंपते मुझे जरा भी भय नहीं हो रहा है। मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि मेरी इस अबोध बेटी को तो व्यवहार कुशल और समझदार बनाकर मेरी लाज रखेगा। ये कहकर उन्होंने भरी आंखों से बेटी और दामाद को विदा किया। चलते समय सुरभि ने अश्रुपूरित नेत्रों से पिता की तरफ देखते हुए कहा, पिताजी मैं वहां किसी से भी झगड़ा नहीं करूंगी। ये कहती हुई आंसू पोंछती वो पति के साथ गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में धीरे से प्रबोध ने सुरभि से कहा, देखो वहां सभी के पैर छूना और घूंघट काढ़े रहना, सुरभि बोली, हमें तो अभी से गर्मी लग रही है। घर पहुंचकर हम ये गहने कपड़े उतार कर मजे से टांग पसार कर सो जाएंगे, बहुत थक गए हम। प्रबोध बोला, इतनी जल्दी पिताजी को दिया वादा भूल गई? सुरभि ने दांतों तले जीभ दबाते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगी। प्रबोध बोला, मेरी छोटी बहन मीना है, वो तुम्हें बहुत प्यार करेगी। तुम्हें जो भी कहना हो धीरे से उससे कह देना, उसे अपनी सहेली समझना। सुरभि ने खुशी से चहकते हुए कहा, तब तो हमें कोई परेशानी ही नहीं होगी। प्रबोध ने कहा, पर ख्याल रखना, कोई उल्टी सीधी जिद मत कर बैठना, वरना वो तुमसे गुस्सा हो जाएगी। सुरभि ने हंसते हुए दोनों कान पकड़कर कहा, ना बाबा, ऐसा नहीं करूंगी। सुरभि बहुत सुंदर थी, उसके भोलेपन ने उसकी सुंदरता में चार चांद लगा दिए थे। फिर हीरे मोतियों के गहने पहने वो साक्षात राज रानी सी लग रही थी। बेटा बहू के गाड़ी से उतरते ही सास ने परछन उतारी, स्त्रियों ने मंगल गान किया। सुरभि का पूरा मुंह घूंघट से ढका हुआ था, हर स्त्री उसकी एक झलक पाने को लालायित थी। उसके हीरे मोतियों के कीमती सेवरों पर स्त्रियों की निगाहें केंद्रित होकर रह गई थी। सभी को विश्वास था कि बहू जरूर बदशकल होगी, तभी उसे हीरे मोतियों से तोला गया है, वरना कोई पागली बाप होगा जो अपनी सुंदर बेटी को इन जैसी मध्यम श्रेणी वाले लोगों के घर में ब्याहेगा। दो चार स्त्रियां टोली बनाकर कह रही थी, लगता है बहू भेंगी है। दूसरी बोली, इसकी एक आंख पत्थर की होगी। तीसरी बोली, कोई कोढ़ की बीमारी ना हो। सभी के मुंह में एक ही वाक्य था, इन्होंने अपने फूल जैसे बेटे को पैसे के लालच में बेच दिया है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही थी। ऐसी बातें सुन सुनकर प्रबोध की माँ और बहन का बुरा हाल था। आखिर मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। हर स्त्री चाहती थी कि सबसे पहले वही बहू का मुंह देखे। इधर सुरभि का गर्मी के मारे बुरा हाल था। मीना उसकी दशा से परिचित थी। उसने सुरभि के कान में धीरे से कहा, भाभी बस थोड़ी देर की बात है, सहन कर लो, फिर हम अपने कमरे में जाकर आराम करेंगे। मीना की बातों से सुरभि को ढांढस बंधा। सबसे पहले प्रबोध की माँ ने एक सोने की चेन से सुरभि की मुंह दिखाई की। मुंह खोलते ही वो खुशी से पागल सी हो गई। क्या रूप था! दो बचकानी आंखें उन्हें देखकर मुस्कुरा उठी। उन्होंने बहू के माथे पर एक दीर्घ चुंबन लिया। अपने प्रति सास की आंखों में वात्सल्यता का भाव देखकर सुरभि तो निहाल हो गई। उसने आदर से उनके पैरों को छूकर माथे से लगाया। पहली बार उसने माँ की ममता भरी आंखों की भाषा समझी थी। हर एक स्त्री ने ऐसी चांद सी बहू पाने की बधाई दी। कंचन और कामिनी का ऐसा संगम उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ऊपर से आशीर्वाद देती पर हृदय में सभी के डा हिलोरे लेने लगे थे। जो बहुएं बैठी थीं वे अच्छी तरह समझ गई थीं कि घर पहुंचकर उनकी सास अच्छी तरह उनकी पूजा करने वाली हैं। हर स्त्री के मन में एक ही बात घुमड़ रही थी, भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, वरना ये महलों की रानी इस घर की योग्य थी? मीना बराबर सुरभि के पास बैठी रही। एक बार उसने उठने का उपक्रम भी किया, पर सुरभि की आंखों में भय देखकर वो फिर बैठ गई और धीरे से बोली, भाभी बस थोड़ी ही देर में तुम्हें अपने कमरे में ले जाऊंगी। सभी स्त्रियां ऊपर से आशीर्वाद देती थीं पर हृदय में कुढ़ी हुई थीं। सास बोली, बेटी मीना, अब बहू बहुत थक गई होगी, जा उसे अपने कमरे में ले जा। मीना सुरभि को उठाकर अपने कमरे में ले आई। रात का धुंधलका फैल रहा था। सुरभि का अंग अंग दर्द कर रहा था। उसने कृतज्ञता से मीना की तरफ देखते हुए कहा, जी जी, हम थोड़ी देर सो जाएं। मीना ने मुस्कुराते हुए कहा, पहले ये संतरे का शरबत पियो, तब आगे क्या करना है हम बताएंगे। सुरभि हंसकर बोली, अरे जी जी, हमें सचमुच बहुत प्यास लग रही थी और थोड़ी भूख भी, कुछ खिला भी दो ना जी जी। सुरभि का अपने प्रति इतना लगाव देखकर मीना का हृदय भर आया। उसने सोचा, इस अल्हड़ इस भोली लड़की को व्यवहार कुशल बनाने में थोड़ा समय लगेगा, वो भागी भागी गई और कुछ मीठा नमकीन लेकर लौटी। दोनों ने मिलकर खाया। थोड़ी ही देर बाद सुरभि की आंखें झपकने लगीं। मीना उसे पलंग पर लिटाकर लौट पड़ी। सुरभि का कमरा सजकर तैयार हो गया था। मीना लौटकर अपने कमरे में आई तो देखा सुरभि घोर निद्रा में थी। उसके सुंदर मुख पर दो चार घुंघराली लटें अटखेलियां कर रही थीं। उसका निर्दोष चेहरा शायद कोई बड़ा ही सुहावना स्वप्न देखकर मुस्कुरा रहा था। वो एक टक उस अप्रतिम सौंदर्य को निहारती रही। इस रूप को देखने में वो इतनी तन्मय हो गई कि ये भी भूल गई कि वो उसे उसके कमरे में ले जाने के लिए आई थी। थोड़ा चैतन्य होते ही उसने सुरभि को जगाया। वो नींद में बुदबुदाई, यार बहुत सुंदर सपना है, देखने दो ना। मीना खिलखिला उठी और बोली, अब केवल स्वप्न ही देखोगी या यथार्थ का भी दर्शन करोगी? चलो अपने कमरे में। ये कहकर प्यार से उसका हाथ पकड़कर उसके कमरे में ले आई। कमरे की सजावट देखकर थोड़ी देर के लिए सुरभि मुग्ध हो गई। कमरे की दीवारें हल्के आसमानी रंग की थीं। खिड़कियों तथा दरवाजों पर जाली के हल्के आसमानी पर्दे लटक रहे थे। हवा के झोंकों से हिलते पर्दे ऐसे लग रहे थे मानो आने वाले का स्वागत कर रहे हों। खिड़की से आती चंद्रमा की शीतल किरणें रोमांचित कर रही थीं। अगरबत्ती की सुगंध से कमरा गमक रहा था। कमरे के बीच उसके पिता का दिया हुआ बहुत ही सुंदर पलंग बिछा था, जिस पर बेला और चमेली की झालरें लटक रही थीं। गुलाब की पंखुड़ियां पूरे पलंग पर फैली हुई थीं। पलंग के ऊपर एक बहुत ही सुंदर झाड़ फारनूस लटक रहा था, जिसकी रोशनी छन छन कर कमरे की सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। एक कोने में एक बहुत ही सुंदर श्रृंगार मेज थी, जिस पर तरह तरह की श्रृंगार की सामग्री रखी थी। दूसरे कोने में बड़ी कीमती एक अलमारी रखी थी, जिसमें सुरभि की साड़ियां, ब्लाउज, पेटीकोट कायदे से सजे हुए थे। टेबल पर फल, मेवे की प्लेट और दूध के दो गिलास ढके रखे थे। सुरभि कमरे की सजावट देखकर ठगी सी रह गई और बोली, जी जी, इतने थोड़े समय में आपने कैसे ये सब कर डाला? फिर उदास होकर बोली, काश मैं भी ये कर पाती। मीना उसे ढांढस बंधाते हुए बोली, भाभी मन पर रखो तो संसार में कोई काम मुश्किल नहीं है। लगन से क्या नहीं हो सकता। तुम ऐसे कार्यों को पसंद करती हो तो कुछ ही दिनों में मुझसे भी अच्छा कार्य कर लोगी। सुरभि ने बच्चों के समान उतावलेपन से पूछा, कब जीजी? मीना मुस्कुराकर बोली, ये तो तुम्हारे ऊपर निर्भर है। सुरभि विश्वास से बोली, तो मैं कल ही से काम सीखने की कोशिश करूंगी। मीना बोली, भाभी अभी तुम आराम करो, हम अपने कमरे में जा रहे हैं। ये कहकर वो दरवाजा भिड़ाकर चली गई। सुरभि को बहुत गर्मी लग रही थी। उसने सोचा, पहले स्नान करना चाहिए। ये सोचकर उसने अपनी सबसे सुंदर पारदर्शक नाइटी निकाली। फिर फुर्ती से सभी गहने कपड़े उतारकर वो बाथरूम में घुस गई। जब वो नहाकर अपनी नाइटी में बाहर निकली तो उस पर आंखें ही नहीं ठहर रही थी। उसका तराशा बदन नाइटी से झांक झांक कर निमंत्रण दे रहा था। गोरे रंग पर अरुणाई अपनी अलग आभा बिखेर रही थी। अबोध भोली चितवन देख कौन होगा जो अपना आपा न खो बैठेगा। प्रबोध थोड़ी देर उस अप्रतिम सौंदर्य को निहारता रहा, फिर हंसकर बोला, सब गहने कपड़े क्यों उतार दिए? एक बार मुझे भी तो उस रूप को देखने का अवसर देती। सुरभि मचल कर बोली, कब तक आपका इंतजार करते? इतने गहने और भारी साड़ी पहनकर हमें बहुत गर्मी लग रही थी। तुम नाराज मत हो, घर तो फिर से पहन लूं। उसकी भोली अदा पर प्रबोध मुग्ध हो उठा। वो फिर मुस्कुराते हुए बोला, सोचा था तुम घूंघट में लिपटी पलंग पर बैठी होगी। मैं मिन्नत करूंगा कि घूंघट हटाकर अपना चांद सा मुखड़ा दिखा दो तो तुम लजाती हुई घुटनों में अपना मुंह छुपा लोगी, पर तुमने तो सब गुड़ गोबर कर दिया। सुरभि आंखें टेढ़ी करके बोली, झूठ बोलते हो, तुमने हजारों बार मेरा मुख देखा है, अब कौन सी नई चीज है मेरे मुंह में लग गई है जिसे न देख पाने का तुम्हें दुख हो रहा है? आने की संगी झगड़ने लगे, फिर दांतों से उंगली दबाकर बोली, अन्ना बाबा नहीं झगड़ूंगी तुमसे। चलते समय पिताजी से वादा किया था, पर तुम भी तो उल्टी सीधी बातें करते हो। ये कहकर वो जम्भाई लेती हुई बोली, बहुत नींद आ रही है। प्रबोध बोला, अरे अभी से सो जाओगी? आज नहीं सोने दूंगा। सुरभि मुस्कुराकर बोली, अगर जगाना है तो। ये कहकर उसने हाथ आगे पसार दिया। प्रबोध बोला, समझ गया लालची, लाया हूं, भूला नहीं हूं। ये कहकर उसने कैडबरी की चॉकलेट का एक पैकेट थमाकर कहा, अब तो नींद नहीं आएगी। सुरभि आंखें नचाकर बोली, जब तुम कहोगे तब भी सोंगी। ये कहकर उसने एक टुकड़ा प्रबोध को पकड़ा कर कहा, देखो तुम भी मत सोना, आज पूरी रात मजे मजे की बातें करेंगे। प्रबोध ने बड़ी कोमलता से उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाकर उसका एक दीर्घ चुंबन लिया। सुरभि ने कुछ सोचते हुए कहा, जब तुम मुझे प्यार करते हो तो कुछ कुछ होता है। प्रबोध ने उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए कहा, बोलो सुरभि, क्या क्या होता है? सुरभि गंभीर होकर बोली, यही तो बता नहीं पा रही हूं, पर तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मन करता है तुम इसी प्रकार हमेशा मेरे पास बैठे रहो। बोलो, मुझे छोड़कर जाओगे तो नहीं? ये कहकर वो उसके हृदय से लग गई। प्रबोध हंसकर बोला, क्या मेरे ऑफिस तुम जाने वाली हो? अरे भाई, ऑफिस तो जाने ही पड़ेगा, वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। सुरभि तपाक से बोली, पैसे की क्या चिंता है, पिताजी से मांग लेंगे। प्रबोध गंभीर होकर बोला, नहीं सुरभि, विवाह के बाद ऐसी बातें तुम्हें सोचनी भी नहीं है। पिताजी से पैसा लेना अब तुम्हारे लिए शर्म की बात होगी। वो अपने पैसे का जिस तरह उपयोग करें, हमें कुछ नहीं लेना है। आज से कसम खाओ कि पिताजी कुछ देंगे भी तो तुम इनकार कर दोगी। सुरभि आश्चर्य से बोली, वो मेरे पिता हैं, बचपन से उनसे पैसे लेती रही हूँ, अब क्यों नहीं लूंगी? क्या वो मेरे पिता नहीं रहे? क्या विवाह के बाद पिताजी गैर हो जाते हैं? ये कहकर वो रुआंसी हो गई। प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए प्रबोध बोला, सुरभि, संसार में स्वाभिमान से बढ़कर कोई चीज नहीं है। विवाह के बाद स्वाभिमान क्या होता है ये तुम थोड़े दिनों में समझ जाओगी। खैर, इस विषय पर हम फिर बातें करेंगे, अब बहुत रात बीत गई है, चलो सोते हैं। ये कहकर उसने बत्ती बुझा दी। सुबह उठकर प्रबोध अपनी दिनचर्या में लग गया। सुबह के 8 बज गए थे, सुरभि अभी तक सोई पड़ी थी। वो धीरे से बुदबुदाई, चाय। प्रबोध को हंसी आ गई। उसने सोचा, सुरभि शायद यही सोचकर पड़ी है कि अभी नौकर उसे लाकर चाय देगा। इतने में मीना चाय लेकर आ गई। भाभी को सोता देखकर उसे भी हंसी आ गई। प्रबोध बोला, मीना, इस अमीर जादी को तुझे ही राह पर लाना है, प्यार से ये सब कुछ सीख लेगी। आज से ये कार्य मैं तुझे सौंप रहा हूँ, तुझे ही इसे हर काम में प्रवीण करना है। मीना हंसकर बोली, भैया, भाभी को राह पर लाना ज्यादा कठिन काम नहीं है, क्योंकि वो बदमिजाज और पिता के पैसों की शान दिखाने वाली नहीं है। वो बहुत ही भोली और निश्चल स्वभाव की है, आप थोड़े दिनों में ही उनमें परिवर्तन पाएंगे। ये कहकर उसने सुरभि को जगाया। नौकर की जगह मीना को चाय का प्याला पकड़े देखकर वो झेम गई और फुर्ती से उठकर बाथरूम में भागी। जल्दी से वो मुंह हाथ धोकर निकल आई और खिसियाकर बोली, जीजी, मैं बहुत बुरी हूं ना, देखो चाय मुझे बनानी थी पर तुम्हें बनानी पड़ी। फिर प्रबोध की तरफ गुस्से से ताकती हुई बोली, तुम ही मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, तभी चॉकलेट देखकर रात को देर तक जगाया था। अब तुम ही बताओ जीजी, मैं क्या करती, देर से सोने पर देर से नींद खुलती है ना। उसकी अल्हड़ता पर प्रबोध और मीना दोनों हंस पड़े। सुरभि मुंह फुलाकर बोली, आज जगाओ तो जाने, तुम्हारी चॉकलेट ही नहीं लेंगे तो नींद भी जल्दी आ जाएगी, पर चाय हम बनाए। पर चाय हम बनाएंगे कैसे, हमें तो चाय बनानी नहीं आती। ये कहकर वो उदास हो गई। फिर अटकते हुए बोली, जीजी, तुम हमें चाय बनाना सिखा दोगी? सबसे पहले हम अम्मा जी और बापू जी को चाय पिलाएंगे। कनखियों से प्रबोध की तरफ देखती हुई वो बोली, और कुछ लोग बिना चाय के रहेंगे। प्रबोध बोला, अच्छा बाबा, मुझे चाय मत देना, पहले बाबूजी और अम्मा जी को ही दे देना, उन्हीं की तुम लाडली बहू हो, मेरी सुत तो मेरी बहन मीना ले लेगी। रात में जब प्रबोध ने चॉकलेट निकाली तो सुरभि ने अवज्ञा से मुंह फेर लिया। प्रबोध के बहुत कहने पर भी उसने चॉकलेट नहीं ली और वो जल्दी सो गई। सुबह तड़के ही उसकी आंख खुल गई। वो भागी भागी मीना के पास पहुंची। मीना सो रही थी। उसे जगाकर वो अधीरता से बोली, अरे चीची कब तक सोती रहोगी, देखो दिन निकल आया है, जल्दी से रसोई घर में चलकर हमें चाय बनाना सिखा दो। सुरभि की लगन और उत्साह देखकर मीना को बहुत खुशी हुई। वो झटपट रसोई घर में उसके संग पहुंच गई। उसने सुरभि को चाय बनाना सिखाया। सुरभि ने ध्यान से देखकर कहा, जीजी चाय बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, कल से मैं खुद बना लूंगी चाय, आपको जगाऊंगी नहीं। ये कहकर उसने ढंग से सिर का पल्लू ढका और चाय लेकर सास ससुर के कमरे में पहुंच गई। सास और ससुर जग गए थे। उसने टेबल पर ट्रे रखकर पहले सास और फिर ससुर के चरण स्पर्श किए, फिर बड़े आदर से चाय का प्याला उन्हें थमाया। सास ससुर अवाक उसका मुंह ताकते रहे। फिर चैतन्य होते ही उन्होंने आशीर्वादों से अपना कोष खाली कर दिया। उन्होंने मीना को बुलाकर कहा, बेटी अपनी भाभी को इतनी जल्दी तुमने काम पर लगा दिया, अभी तो लाडली के हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, कल से तुम्हें ये कार्य करना है। उदास होती सुरभि बोली, अम्मा जी क्या हमारी चाय बहुत खराब बनी है जो आप जीजी के हाथों की बनी चाय पीना चाहती हैं? सास ने प्यार से उसे कलेजे से लगाते हुए कहा, अरे नहीं बेटे, अभी से तुम्हें गृहस्थी में जोतना नहीं चाहती, अभी तो तुम्हारे खेलने खाने के दिन है। सुरभि मुंह फुलाकर बोली, और जीजी क्या बुढ़िया हो गई है? सास ससुर और मीना के पेट में हंसते हंसते बल पड़ गए। मीना ने प्रबोध से कहकर एक छोटे कमरे में गैस का चूल्हा और खाना पकाने का सभी सामान रखवा दिया। फिर हुई सुरभि की ट्रेनिंग। काम में जुटे रहने से सुरभि का समय भी कट जाता था। जिस दिन कोई स्वादिष्ट व्यंजन सुरभि बना पाती, उस दिन वो खुशी से फूली न समाती। शुरू में वो बहुत गलतियां करती थी, कभी आटे में ढेरों पानी पड़ जाता तो कभी तरकारी में ज्यादा नमक, तब वो रुआसी हो जाती, पर मीना और प्रबोध के प्रोत्साहन से वो फिर काम में जुट जाती। शाम को प्रबोध के आने के पहले मीना उसे सजा कर कहती, भैया आने वाले हैं, वो थके होंगे, अपनी मधुर मुस्कान द्वारा ही तुम उनकी थकान दूर कर पाओगी। सुरभि लजा जाती। 15 दिन बाद ही उसके पिता उसे लिवाने आ गए। 2 दिन तो वो मायके में उछलती कूदती रही, फिर उसको प्रबोध की याद सताने लगी। वो पिता से बोली, पिताजी अब मुझे वहां जाना चाहिए, बहुत काम पड़ा है उसे निपटाना है। फिर पुरखिन के समान बोली, मुझे जल्दी पहुंचना चाहिए। उसे इस प्रकार की बातें करती देख सेठ चमन लाल उसे विस्फारित आंखों से ताकते रह गए। वो लाडली बेटी जो एक पल के लिए भी उनसे अलग होने पर सिसकती थी, आज उस घर को जहां गए उसे सिर्फ 15 दिन हुए हैं जाने को व्याकुल है। सेठ जी बोले, बेटी कुछ दिन और रुक जा। तो वो उतावली होकर बोली, नहीं पिताजी वहां ढेरों काम पड़े हैं, उसे मुझे ही निपटाना है। पिता के हृदय से बोझ हट गया। वो समझ गए कि उनकी बेटी ने अपने को उस घर के अनुरूप ढाल लिया है, वो वहां बहुत सुखी है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी जल्दी अपने बूढ़े पिता को भूल गई? सुरभि ने पिता के गले में बाहें डालते हुए कहा, पिताजी मैं बीच बीच में बराबर आती रहूंगी ना, आप मेरी जरा भी चिंता मत कीजिएगा, वहां मैं बहुत सुखी हूँ। ये कहते कहते लज्जा से उसके गाल आरक्त हो उठे। शाम को प्रबोध के घर पहुंचने से पहले ही वो पहुंच गई। प्रबोध को चाय पकड़ाते हुए वो बोली, हमें एक चीज ला देंगे? प्रबोध मुस्कुराकर बोला, सरकार हुक्म करो। सुरभि रूठ कर बोली, जाइए हम आपसे नहीं बोलते, आप तो मजाक करते हैं। प्रबोध बोला, लो अब मैं गंभीर बन गया। ये कहकर वो सचमुच गंभीर बनकर उसकी तरफ निहारते हुए बोला, आप ठीक है ना? सुरभि खुश होकर बोली, हाँ। अब ध्यान से हमारी बात सुनो, हमें प्यारा सा एक झबरेला कुतिया का पिल्ला चाहिए, बोलो ला दोगे ना? प्रबोध हंसता हुआ बोला, उसका क्या करोगी? सुरभि मासूमियत से बोली, उसके संग हम मजे से खेलेंगे। प्रबोध बोला, पूरा दिन खेलोगी या कुछ काम भी सीखोगी? सुरभि विश्वास के साथ बोली, हम दोनों काम कर लेंगे, अब ज्यादा अपनी टांग मत अड़ाओ। ये कहकर वो मुंह फेर कर बैठ गई। प्रबोध प्यार से उसका हाथ दबाकर बोला, मैं तुमसे हंसी कर रहा था, अपने दोस्त दिलीप की कुतिया बहुत सुंदर है, उसका बच्चा होने वाला है, मैं पहले से कह देता हूँ एक प्यारा सा पिल्ला तुम्हारे लिए रखवा दूंगा। सुरभि उसके सीने से लगकर बोली, तुम कितने अच्छे हो। दिन बीतते गए, सुरभि पूरे घर में अपनी सुगंध बिखेरती रही। सास ससुर ननद और प्रबोध सभी उसके व्यवहार से प्रसन्न थे। प्रबोध ने तो कल्पना भी नहीं की थी कि इतने नाजों से पली सुरभि अपने को उन जैसा ढाल लेगी। जब पहली बार सुरभि ने शर्माते हुए विवाह का प्रस्ताव रखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया था। उसने सोचा था कि वो सुरभि का बचपना ही है, थोड़े दिनों बाद उसे कोई रईस का लड़का मिल जाएगा तो वो अपना विचार बदल देगी। पर जब सुरभि ने अपने पिता से कहकर जोर डलवाया तो उसे विश्वास हो गया कि वो सचमुच उससे स्नेह करती है। तब वो विवाह के लिए राजी हो गया था। जमाता में जो गुण होने चाहिए वे सभी प्रबोध में थे, पर नहीं था तो अटूट पैसा। सेठ चमनलाल ने सोचा, उनका सभी कुछ तो सुरभि का है, धन की पूर्ति तो वो आसानी से कर देंगे। उन्होंने प्रबोध के माता तथा पिता से मिलकर विवाह पक्का कर दिया था। विवाह में प्रबोध ने दहेज लेने से इनकार कर दिया था। उसने कहा था, बाबूजी, अब सुरभि मेरी पत्नी है, उसका सभी भार मेरे ऊपर है, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। सेठ जी तो गदगद हो गए थे। अपनी बेटी की पसंद पर उन्हें नाज हुआ था। शायद ऐसा हीरा वो भी न खोज पाते। बेटी को विदा करके वो निश्चिंत हो गए थे। एक दिन सुबह से सुरभि की दाईं आंख फड़क रही थी। किसी अमंगल की आशंका से उसका हृदय कांप रहा था। उसे सबसे ज्यादा अपने पिता की चिंता थी, कहीं उसके पिता बीमार ना पड़ गए हों। सास से आज्ञा लेकर वो पिता को देखने चली गई। सेठ जी को प्रसन्नचित्त और स्वस्थ पाकर वो बड़ी खुश हुई। पूरा दिन उनके संग बिताकर वो कार से घर चली। रास्ते में उसने सोचा, क्यों न प्रबोध को भी लेती चले। दूर से उसने देखा कि प्रबोध किसी लड़की से घुट घुट कर बातें कर रहा है। दोनों ही किसी बात पर खिलखिला उठे। उसने गाड़ी कुछ दूरी पर रुकवा ली। लड़की की शक्ल तो दिख रही थी पर बातें सुनाई नहीं पड़ रही थी। आज ही वो मायके से कैमरा लेकर लौटी थी कि मीना तथा सास की तस्वीर उतारेगी। उसने कैमरा उठाया और गाड़ी से उतरकर कुछ दूर जाकर प्रबोध और उस लड़की का फोटो खींच लिया। गाड़ी पर बैठने पर उसने देखा कि यकायक लड़की ने प्रबोध के कंधे पर अपना हाथ रख दिया और फिर दोनों एक गाड़ी के निकट आए। लड़की ने कुछ कहा, प्रबोध ने इनकार में सिर हिला दिया। तब लड़की ने हंसते हंसते उसे गाड़ी में खींच लिया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। उनके ठहाकों की आवाज कुछ दूर तक सुनाई देती रही। सुरभि ने उसके 3-4 फोटो उतारे थे। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया था। इतना धोखा! उसने प्रबोध को कितना आदर्शवादी समझा था। वो इतना गिरा हुआ इंसान होगा, इसकी तो उसने कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखें भर आई। घर पहुंचते ही वो गुमसुम अपने कमरे में चली गई। सास ने जब उसे उदास देखा तो मीना से कहा, बेटी, जरा बहू से पूछ तो सही, क्या बात है? उसके पिताजी ठीक ठाक है ना? मीना कमरे में पहुंच गई। सुरभि की आंखें सूजी हुई थीं। मीना ने जब उसके पिता के बारे में पूछा तो वो बोली, वो ठीक है, बस मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, थोड़ी देर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। मीना दुखी होकर कमरे से निकल आई। उस दिन प्रबोध काफी देर से घर लौटा। वो माँ से किसी के बारे में बात करता रहा। फिर सुरभि को न देखकर उसने पूछा, सुरभि कहाँ है? मीना ने कहा, भाभी की तबीयत अच्छी नहीं है, वो कमरे में सो रही हैं। प्रबोध की आहट पाकर सुरभि ने आंखें बंद कर ली। प्रबोध ने सोचा, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं है, उसे जगाना उचित नहीं होगा। ये सोचकर बहुत धीरे से कपड़े उतार कर वो पलंग पर लेट गया और थोड़ी देर में ही खर्राटे भरने लगा। अपमान से सुरभि की आंखें भर आईं। एक तो इतनी देर से लौटे हैं, ऊपर से एक बार भी मेरी तबीयत के बारे में नहीं पूछा। खूब मौज मस्ती मारी है ना, मेरा ख्याल क्यों आएगा? एक तो चोर, ऊपर से घघोर, सोचते हैं कि मैं ही पहल करूंगी, मुझे क्या पड़ी है? अपमान से उसका रुआ रुआ जलने लगा। वो पूरी रात आंसुओं से तकिया भिगोती रही। सुबह जल्दी उठकर दिनचर्या में लग गई। प्रबोध उस दिन देर से उठा और फिर जल्दी से तैयार होकर उसने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई पर सुरभि को न पाकर ऑफिस चला गया। सुरभि भी उसके सामने पढ़कर अपनी दुर्बलता नहीं दिखाना चाहती थी। दूसरे दिन भी प्रबोद काफी देर से घर पहुंचा। आते ही वो सुरभि से बोला, सुबह जल्दी में तुम्हारी तबीयत पूछ नहीं पाया, अब तबीयत कैसी है? सुरभि फीकी मुस्कुराहट से बोली, मेरी बीमारी की चिंता होती तो देर से क्यों आते? प्रबोद बोला, आज रात देर तक ऑफिस में काम करता रहा, बहुत थक गया हूँ, एक कप चाय तो पिला दो। सुरभि ने मनीमन सोचा, इतनी देर उसके घर में रहे, क्या उसने चाय भी नहीं पिलाई होगी? मुझे बुद्धू समझ रहे हैं, सचमुच इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं। मैं तो घर की मुर्गी दाल बराबर हो गई हूँ, इन्हें तो नई नवेली मिल गई है, मुझे क्यों पूछेंगे? भुनभुनाती हुई वो चाय का प्याला रख कर जाने लगी। उसका हाथ प्यार से पकड़ते हुए प्रबोध बोला, अरे थोड़ी देर हमारे पास भी तो बैठो। सुरभि के मन ने कहा, कैसा मक्खन लगा रहे हैं, जिनके मन में खोट होता है वही मक्खन लगाते हैं। वो रुखाई से बोली, रसोई घर में काम पड़ा है, और कहकर चली गई। प्रबोध के अहम को चोट पहुंची। उसने सोचा, दो दिन जरा देर क्या हो गई, सुरभि का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ गया। अरे ऑफिस में ज्यादा काम था, मैं भी किसी का नौकर हूँ, चाहती है 24 घंटे इसी की तीमारदारी में लगा रहूं। बाप के पैसे का इसे घमंड होता जा रहा है, अपने आगे किसी को समझती नहीं है। तीन चार दिन दोनों ही सोचते रहे कि पहल दूसरा करे, दोनों ने ही पहल नहीं, दोनों के अभिमान ने सिर उठा रखा था, कोई झुकने को तैयार नहीं था। हफ्ता भर इसी तरह बीत गया। सुरभि अब बहुत कम बात करती थी, मीना से भी उसने बात करनी छोड़ दी थी, बस अकेले कमरे में पड़ी पड़ी रोया करती थी। एक दिन सुबह उसने सास से पूछा, अम्मा जी मैं कुछ दिनों के लिए पिताजी के पास चली जाऊं? सास ने सोचा, बेचारी इन दिनों काफी दुखी रहती है, कुछ दिन पिता के पास रह जाएगी तो मन बहल जाएगा। उसने प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटी जरूर जाओ, इधर तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। सुरभि उसी दिन पिता के घर चली गई। उसे आया देखकर सेठ जी बहुत खुश हुए, पर ध्यान से सुरभि के मुंह को देखकर लगा कि दाल में जरूर कुछ काला है। उन्होंने प्यार से बेटी की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, इस बूढ़े की याद तो आई, और वो खिलखिला पड़े। सुरभि गंभीर स्वर में बोली, पिताजी मैं रहने आई हूँ। सेठ चमनलाल बोले, बेटा तेरा घर है, जितने दिन रहेगी इस बूढ़े का मन लगा रहेगा। पर वो मनी मन चिंतित हो गए। दो हफ्ते बीत गए। इस बीच प्रबोध सुरभि को बुलाने आया, पर उसने बहाना बनाकर उसे टाल दिया। अपमान से प्रबोध का मुंह लाल हो गया। वो बोला, ठीक है जब तुम्हारी इच्छा हो चली आना, रोज रोज मुझे भी कहाँ समय है कि मैं तुम्हें लेने आता रहूंगा। सुरभि के मन ने कहा, ठीक है तुम्हें मेरे पास आने का समय नहीं है, पर उस कुलटा के पास जाने के लिए खूब समय है। अब सुरभि छुप छुप कर प्रबोध के लौटने के समय पहुंच जाती। कभी कभी वो देखती कि वही लड़की हंसती हंसती प्रबोध को गाड़ी में बैठा कर ले जाती। फिर थोड़ी देर बाद प्रबोध को घर छोड़ वो दूसरे आदमी के संग वापस लौट जाती। सुरभि सोचती, तो ये बात है, दोनों को फंसाए हुए है, ये मर्द भी कितने तोते चश्म है। घर पर बीवी इंतजार कर रही होगी और ये गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। महीनों बीत गए, न तो सुरभि स्वयं ससुराल गई, न ही प्रबोध उसे लिवाने आया। सेठ जी ने कितनी ही बार सुरभि से पूछा, पर वो रोती हुई अपने कमरे में चली आती थी। उन्होंने प्रबोध से भी पूछा, पर उसने अपनी अनभिज्ञता ही दिखाई। वो बोला, बाबू जी बताइए मैं क्या करूं, मैंने या मेरे घर वालों ने हमेशा उससे प्यार का व्यवहार किया, समझ में नहीं आता कि वो किस बात पर इतनी गुस्सा है, आप ही पूछिए शायद आपको बता दे। सेठ जी बोले, बेटा बीसों बार पूछ चुका हूँ पर वो उत्तर ही नहीं देती, बस रोती रहती है। एक दिन अनमनी सी सुरभि सुनसान सड़क पर चली जा रही थी, यकायक एक लड़का स्कूटर पर आया। वो उस पर झपट पड़ा। वो उसकी इज्जत लूटना ही चाहता था कि सुरभि चीख उठी। उसकी चीख सुनकर प्रबोध जो उधर से जा रहा था आ गया। गुंडा उसे देखकर भाग खड़ा हुआ। प्रबोध ने देखा सुरभि की आंखों से आंसू टपक रहे थे। वो बड़ी उदासीनता से बोला, स्कूटर पर बैठ जाओ तो मैं तुम्हारे पिता के घर उतार दूंगा। घर छोड़कर वो बिना कुछ कहे लौट गया। शोक तथा अपमान से सुरभि रो पड़ी। उसने सोचा, इतना दम एक बार भी मेरी तरफ नहीं देखा और न ही अपना अधिकार जताकर मुझे डांटा। इस उदासीनता का यही मतलब है कि ये मेरे से अब पिंड छुड़ाना चाहते हैं, शायद यही सब जता कर वो मुझे तलाक देना चाहते हैं। ठीक है, मैं ही इनसे नीचे क्यों रहूं? मैं ही पहले इन्हें तलाक देकर दिखा दूं कि मेरा भी स्वाभिमान है। जबरदस्ती मैं इनके गले नहीं पड़ना चाहती। सुरभि घर लौटी तो देखा चमनलाल उसकी बाट चोह रहे थे। उसकी भरी आंखें और अस्त व्यस्त कपड़े देखकर वो घबरा कर बोले, बेटी कहाँ चली गई थी? मैं परेशान हो गया था। बिना किसी भूमिका के सुरभि बोली, पिताजी मैं प्रबोध से तलाक लेना चाहती हूँ। विस्फारित नेत्रों से बेटी की तरफ निहारते हुए वो बोले, पर बेटी बात क्या है जो इतना बड़ा निर्णय तुमने कर डाला? सुरभि गंभीर होकर बोली, पिताजी अगर आप तलाक की अर्जी प्रबोध को नहीं भिजवाएंगे तो मैं छत से कूद कर जान दे दूंगी। सेठ जी उसे समझाने के स्वर में बोले, किस बुनियाद पर उससे तलाक लोगी? क्या वो तुम्हें पीटता है, खाना नहीं देता? कुछ सबूत तो देना पड़ेगा। फिर बेटी तलाकशुदा लड़की को पहले से अच्छा पति मिल जाए इसकी क्या गारंटी है? शादी गुट्टे गुड़ियों का खेल नहीं होता। ये जन्म जन्मांतर का वो बंधन है जो भगवान बांधता है, इसे तोड़ना खिलवाड़ नहीं होता। छोटी मोटी घटनाएं तो हर घर में होती रहती हैं, अगर उन्हें गंभीरता से लिया जाए तो हर घर में विवाह के दूसरे दिन ही तलाक हो जाए। ये सात फेरों का वो मजबूत बंधन है जिसे आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। सुरभि ने गंभीरता से उत्तर दिया, पिताजी आप क्या सोचते हैं कि इस विवाह की असफलता के बाद मैं दूसरे विवाह के बारे में सोचूंगी? बिल्कुल नहीं पिताजी, अब तो जीवन पर्यंत आपके पास रहूंगी, और रही सबूत की बात, वो मेरे पास है और मैं उसे अदालत में ही पेश करूंगी। अपनी मान मर्यादा और बेटी के भविष्य का सोचकर सेठ चमनलाल की आंखें भर आईं। वो सुरभि की जिद जानते थे, कहीं ये नादान लड़की सचमुच छत से छलांग न लगा ले। ये सब सोचकर वो भर्रे गले से बोले, ठीक है बेटी मैं आज ही उसे तलाकनामा भेज देता हूँ। घर लौटने पर प्रबोध ने सोचा, उसने भी ठीक नहीं किया। एक बार उसे प्यार से सुरभि से बातें तो करनी थी, मानना उसकी गलती थी, पर वो तो परिपक्व दिमाग का था। उसको समझाने के बदले उसने उदासीनता दिखाकर अच्छा नहीं किया। दूसरे दिन जब वो ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था तभी चपरासी ने उसे तलाकनामा पकड़ा दिया। उसे पढ़कर उसके पैरों तले की धरती खिसक गई, उसके हाथ कांपने लगे, वो धम से वहीं बैठ गया। मीना ने पत्र उठाकर पढ़ा तो वो बदहवास होकर माता पिता के पास दौड़ी। प्रबोध के माता पिता भी सन्न रह गए, उनकी आंखें डबडबा आईं। प्रबोध उस दिन ऑफिस नहीं गया, वो उदास होकर पलंग पर लेट गया। विवाह के पश्चात उसका जीवन कितना सुखी था। सुरभि की बचकानी हरकतों पर हंसते हंसते उसके पेट में बल पड़ जाते थे। उसके वो स्वर्णिम दिन अंधकार में डूब गए। तलाक देने का क्या कारण था, सुरभि उससे इतनी नाराज क्यों थी, ये वो आज तक जान नहीं पाया था। पत्र को बार बार पढ़कर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था। इधर मानसिक तनाव के कारण उसका स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। उसका श्रीहीन चेहरा देख उसके माता पिता और बहन मीना कम चिंतित न थे। आज इतना बड़ा आघात उनका बेटा कैसे सहन कर पाएगा, ये सोचकर उनका हृदय फटा जा रहा था। मुकदमे वाले दिन वो नियत समय पर कचहरी पहुंच गया था। उसके माता पिता और ससुर कोई भी नहीं गया था, कौन सा मुंह लेकर वे जाते? सेठ चमनलाल की पगड़ी सरेआम उछलने वाली थी, वो कैसे जाते? नियत समय पर जा जाए, कोर्ट की कार्यवाही शुरू होने ही वाली थी। इतने में वही लड़की सुरभि के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसे पास देखकर सुरभि गुस्से से पागल सी हो गई। आग्नेय नेत्रों से उसकी तरफ देखकर वो बोली, मेरा घर फूंक कर यहां तमाशा देखने आई हो? मेरे भोले भाले पति को फंसा कर तुम जैसी बह या बजारू औरत को कभी सुख नसीब नहीं होगा। उसकी बातें सुनते ही थोड़ी देर के लिए वो लड़की अवाक उसका मुंह ताकती रही। फिर पूरी बात समझते ही उसने गुस्से में कस कर एक चाटा सुरभि के गाल पर मारते हुए कहा, बेवकूफ लड़की होश की बातें कर, वो प्रबोध तो मेरा मौसेरा भाई है। मेरे पति का तबादला प्रबोध भैया के ऑफिस में हो गया था। उस दिन उन्हें वहां देखकर मैं खुशी से खिल उठी थी। उन्हें जबरदस्ती में गाड़ी में बिठाकर चाय पिलाने ले गई थी। उस दिन मेरे पति को ओवर टाइम करना था। प्रबोध भैया को घर छोड़कर मैं अपने पति के संग लौट गई थी। फिर तो हम भाई बहन बराबर मिलते रहे। मैं कई बार तुम्हारे घर भी गई थी, पर तुम मायके में थी, इस कारण तुमसे मिल नहीं पाई। पर तुम्हारी तस्वीरें वहां देखी थी। मैं जानती थी आज तुम यहाँ आओगी, इसी कारण तुम्हारे पास आकर बैठी थी कि मेरे इतने अच्छे भैया को तुम किस कारण तलाक दे रही हो। मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, पर तुम्हारी नासमझी पर गुस्सा और तरस दोनों आ रहा है। उस लड़की की बातें सुनकर सुरभि में आश्चर्यजनक परिवर्तन हुआ। वो बिजली की तेजी से उठ खड़ी हुई। उसने वकील के हाथों से तलाकनामा छीना, फिर प्रबोध का हाथ पकड़कर वो पत्ते झाड़ भागी। अपनी गाड़ी के निकट आते ही उसने सांस ली, फिर प्रबोध को गाड़ी में बिठा कर स्वयं बैठकर ड्राइवर से बोली, पिताजी के घर चलो। इधर सुरभि की इस हरकत से थोड़ी देर के लिए अदालत में सन्नाटा छा गया, फिर पूरा हॉल ठहाकों से गूंज उठा। मुस्कुराते हुए जज साहब बोले, दूसरा केस पेश करो। गाड़ी में बैठा प्रबोध अवाक सुरभि का मुंह निहारता रहा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि सुरभि में परिवर्तन कैसे आ गया। उसे आश्चर्य से अपनी तरफ ताकते देख सुरभि ने अपराधी भाव से गर्दन नीची करके कहा, घर चलो, सब बता दूंगी, पर पहले एक मिनट पिताजी के पास चलेंगे, वो मेरी इस हरकत से बहुत दुखी हैं। घर पहुंचकर सुरभि दूर से ही चिल्लाई, पिताजी हम आ गए हैं। बेटी दामाद को एक साथ मुस्कुराते देख सेठ जी दौड़ पड़े और दोनों को हृदय से चिपकाकर खुशी से उनकी आंखें नम हो गईं। सुरभि बोली, पिताजी हम ठहरेंगे नहीं, बाबूजी अम्मा जी और मीना चिंता कर रहे होंगे। ये कहकर वो प्रबोध का हाथ पकड़कर उछलती कूदती गाड़ी में बैठ गई। सेठ चमनलाल ने चैन की सांस ली। ससुराल पहुंचकर सुरभि संकोच और शर्म से कड़ सी गई। सास ससुर और मीना का वो किस मुंह से सामना करेगी, उसकी आंखें छल छला उठी। प्रबोध ने उसे सांत्वना दी, फिर घर में प्रवेश कर वो हंसता हुआ बोला, देखो माँ, तुम्हारी बहू को पकड़ कर ले आया हूँ, अब इसको बांध कर रखना। सुरभि ने भरी आंखों से सास और ससुर के पैर छुए। मीना के गले लग कर वो फफक फफक कर रो पड़ी। मीना उसे समझाती हुई बोली, भाभी सुबह का भूला अगर शाम को आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ये कहकर उसने सुरभि को हृदय से लगा लिया। इतने दिन घर के उदासीन वातावरण में खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसा लगा सुरभि ने चारों तरफ अपनी सुगंध बिखेर दी हो, पर स्वयं सुरभि अपने को क्षमा नहीं कर पा रही थी। अपराध बोध और लज्जा से उसकी गर्दन झुकी थी। राज शयन कक्ष में घुसते हुए उसका हृदय ग्लानी से टूक टूक हुआ जा रहा था। अपने देवता जैसे पति पर अविश्वास करके उसने कितना बड़ा पाप कर डाला था। ये तो कहो, ऐन वक्त पर प्रबोध की बहन नीना ने पहुंचकर उसका सुनहरा संसार चलने से बचा लिया था, वरना अनर्थ होने में देरी कितनी थी। काश एक बार वो प्रबोध से पूछ लेती तो इतना बड़ा कांड होने से बच जाता। किसी प्रकार दिल कड़ा करके वो कमरे में घुस गई। अपराधी के समान वो गर्दन झुकाकर प्रबोध से बोली, प्रबोध मुझे कठोर दंड दो, मैं उसे सहर्ष सहन करूंगी। तुम जितना चाहो फटकारो, मैं इसी के योग्य हूँ। ये कहते कहते वो रो पड़ी। प्रबोध ने उठाकर हृदय से लगाते हुए कहा, नहीं सुरभि, तुमसे कम मैं भी गुनाहगार नहीं हूँ। जिस दिन तुम उदास थी मुझे उसी समय तुमसे पूछना था। मैंने उस समय तुम्हारी उदासीनता को खास महत्व नहीं दिया। कई बार तुम्हारे घर गया था, वहां भी मैंने औपचारिकता ही दिखाई। तुम भोली और निश्चल स्वभाव की हो। अगर मैं प्यार से तुमसे पूछता तो तुम शायद सब कुछ बता देती। गुंडे से तुम्हें छुड़ाने के बाद भी मैंने कोई सहानुभूति के शब्द नहीं कहे जबकि तुम रो रही थी। तुम अबोध थी, पर मैं तो परिपक्व दिमाग का था। गलती तो सच पूछी जाए तो हम दोनों की है, पर सजा दोनों खानदानों को भुगतनी पड़ी। सुरभि, विवाह एक पवित्र बंधन है, पति पत्नी के जीवन की नींव विश्वास है। जिस दिन इस विश्वास रूपी नींव में अविश्वास रूपी दीमक का प्रवेश हो जाता है ना, उसी दिन से ये नींव खोखली पड़ती जाती है। पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। अपने हृदय में उठने वाले संदेह का निवारण एक दूसरे के समय रहते कर लेना ही बुद्धिमानी है। अगर दोनों में से किसी से गलती हो भी गई हो तो उसे कबूलने पर उसकी हेठी नहीं होती, बल्कि दूसरे के हृदय पर वो उच्च स्थान ही प्राप्त कर लेता है। पति पत्नी का एक दूसरे के अनुरूप अपने को ढालना ही सुखमय जीवन का रहस्य है। विवाह पर पति पत्नी को जो शपथ दिलाई जाती है, अगर उसका सही ढंग से पालन किया जाए तो जीवन में दरारें नहीं पड़ती। इस प्रकार की गलतियां तो बड़े बड़े बुद्धिमानों से हो जाती है, तुम तो अभी अबोध हो। ये सही है कि पति हो या पत्नी, कोई भी एक दूसरे के जीवन में तीसरे के प्रति आकर्षित होना सहन नहीं कर पाता। ईर्ष्या मनुष्य से नीच कार्य करवा देती है। फिर सुरभि के आंसू पोंछता हुआ प्रबोध बोला, आज तुम्हें तुम्हारा प्यारा उपहार दूंगा। सुरभि मचल कर बोली, तो जल्दी से निकालो ना। प्रबोध बोला, पहले आंखें बंद तो करो। सुरभि की आंखें बंद करते ही उसने एक बहुत प्यारा सा झबरेला पिल्ला उसकी गोद में रखकर कहा, अब आंखें तो खोलो। पिल्ले को देखते ही पहले तो सुरभि खिल उठी, फिर किसी बड़ी बूढ़ी के समान बोली, भत क्या मैं बच्चा हूं जो पिल्ले से खेलूंगी। प्रबोध शरारत से मुस्कुराता हुआ बोला, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम पिल्ले से खेलोगी। सुरभि उसके सीने से लग कर लजाती हुई बोली, अब हम बड़े चो हो गए हैं। प्रबोध हंसा एक बहुत प्यारी सी हंसी, फिर बोला, हाँ सुरभि तुम सचमुच में बड़ी और समझदार हो गई हो। दरवाजे पर खड़ी मीना हंसती हुई बोली, भैया और भाभी इस खुशी में हम मिठाई खिलाने आए हैं। ये कहकर उसने दोनों के मुंह में लड्डू डालते हुए कहा, अब इस पिल्ले का इस घर में क्या काम है, अब तो प्यारा सा मुन्ना हमारे घर आने वाला है। ये कहकर वो भाग खड़ी हुई। प्रबोध ने प्यार से सुरभि की चिबुक उठाते हुए पूछा, सच सुरभि? सुरभि ने शर्मा कर घुटनों में मुंह छिपा लिया।
लेखिका शकुंतला ब्रजमोहन के कहानी संग्रह चक्रव्यूह की कहानियों का ऑडियो रूपांतरण।
ये थी arparijo.com की प्रस्तुति।